ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में शांति वन, बाबा की अवतरण भूमि, जहां पर अव्यक्त बाबा के बहुत सुंदर पाठ चले हैं, हजारों भाई बहनों से इस डायमंड हॉल में बाबा ने मिलन मनाया है। ऐसे सुंदर, शांत, एकांत, तपस्वी धरनी पर आप सब पहुंचे हैं। आप सब का बाबा की तरफ से, हमारी दादियों की तरफ से, मधुबन के भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी अपने दिल में कुछ एक भावनाएं लेकर, कुछ अनुभूति करने का लक्ष्य लेकर इस भूमि पर आए हैं। योग तपस्या, जिसको हम भट्टी नाम देते हैं, वैसे भी जब कोई चीज पक्की करनी होती है, परिवर्तन करना होता है, तो उसको भट्टी के अंदर डालते हैं। आज अगर कोई पक्की ईंट बनाना है तो उसको भी बहुत बड़े बड़े भट्टे लगाकर, भट्टियां लगाकर उसमें पकाई जाती हैं। अगर सोने से अलाय निकालनी है, उसकी मिक्स जो हुआ है उसको खत्म करना है, तो उसके लिए भी सोनार एक भट्टी, तेज भट्टी जला करके उसको प्योर कर देता है, शुद्ध कर देता है। हम सब इस योग तपस्या भट्टी में आए हैं। हमारा भी लक्ष्य यही है कि बाबा की याद की अग्नि, जिसको हम योग अग्नि कहते हैं, उस योग अग्नि में हम सब ऐसे समा जाएं जो आत्मा के अंदर देह अभिमान की बहुत समय से खाद पड़ती गई, जिस देह अभिमान के कारण अनेक विकारों की उत्पत्ति हुई, कड़े संस्कार बनते गए, इस भट्टी में उस देह अभिमान की अलाय को, उस खाद को निकालना है, जो हमारे रियल संस्कार थे। आपने देखा, जो पुराने बाबा के बच्चे हैं वो देखते जानते हैं, बाबा का अव्यक्त होना, और अव्यक्त होते ही बाबा ने कहा, बच्चे पढ़ाई का समय तो पूरा हो गया, लेकिन जब परीक्षा का समय होता है तो पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है। इतने वर्षों से हमने साकार बाबा की मुरलियों को रिवाइज किया, और अव्यक्त बाबा की मुरलियों से नवीनता से, नए नए ढंग से पुरुषार्थ किया। 2017 31 दिसंबर को बाबा ने अपने इस पार्ट को, अव्यक्ति पार्ट को भी समाप्त किया, संपन्न किया। और उसके बाद हम सब देख रहे हैं कि अव्यक्त बाबा के भी महावाक्यों को अभी हम रिवाइज कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और रिवाइज करते करते ऐसे अनुभव होता है जैसे बाबा अभी बच्चों को रियलाइज करा रहे हैं। क्योंकि रिवाइज कोर्स के बाद है ही रियलाइजेशन कोर्स। तो मैं समझता हूँ आप सब इस 3 दिन की भट्टी में अपने रियल स्वरूप को रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है। बाबा की बहुत ऊंची भावनाएं हैं, बाबा की हम बच्चों में बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि इन बच्चों को मैंने इतना संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ देवी देवता बनाया था और ये फिर से वही बनने के लिए मेरे पास आए हैं। हमारे इस अलौकिक जीवन का एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। पहले तो बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, नया जन्म दिया, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण जो सच्चे और पक्के बन गए, बहुत भाग्यवान हैं वो जिनकी भगवान पालना करते हैं, जिनको खुद पढ़ाते हैं शिक्षक बनकर के और सतगुरु बनकर के जिनका मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें वरदानों से सजाते श्रृंगारते हैं। ऐसे भाग्यवान हम सभी संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं हैं और हम सबके आगे एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। हम देवता बनने के पहले ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना चाहते हैं। फरिश्ता माना हमारी संपन्न संपूर्ण स्टेज। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुप्त तपस्या करके कार्य व्यवहार नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, सेवाएं नहीं छोड़ी, लेकिन सबके बीच में रहते हुए बुद्धि से बिल्कुल उपराम न्यारे प्यारे बनकर अपनी अव्यक्त स्थिति में रह करके और विशेष तपस्या करके संपन्न बने, संपूर्ण बने और अपने बच्चों को अपने समान बनाने के लिए इतने वर्षों से अव्यक्त वतन में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। साकार के द्वारा जो पालना मिली वो तो बहुत थोड़े बच्चों को मिली, लेकिन अव्यक्त बाबा के द्वारा, बाप दादा के द्वारा पूरे विश्व के कोने कोने में हजारों लाखों बच्चों ने बाबा की पालना ली, अनुभूति की, अलौकिक जन्म प्राप्त किया। अब बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अव्यक्त वतन में आकर मेरे से मिलन मनाए, अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके अव्यक्त वतन के अनुभव करें। तो मैं आप सबको एक बहुत बड़ा एक पहला लक्ष्य देना चाहता हूँ। इस भट्टी में आप आए हैं, अभी और कोई भी कारोबार आपको नहीं करनी है। हो सकता है सवेरे एक आधा घंटा आपको भंडारे में मदद के लिए जाना पड़े, लेकिन बाकी पूरा ही समय है। अव्यक्त वतन क्या है और अव्यक्त वतन से बाप दादा कैसे विश्व परिवर्तन की सेवाएं कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों का अव्यक्ति रूप में आवाहन करते हैं, एक एक बच्चे में शक्ति भरते हैं, सकाश देते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, एडवांस पार्टी को तैयार कर रहे हैं, कितना श्रेष्ठ कार्य अव्यक्त वतन से चल रहा है। क्या आप सबको ये संकल्प नहीं आता कि हम भी एक बार साकार में होते हुए, ट्रांस के द्वारा नहीं, ट्रांस का पार्ट तो कोई कोई आत्मा को मिलता है, लेकिन दिव्य बुद्धि के बल से मैं अपने उस अव्यक्त वतन का सैर करूं। विधि बताता हूं मैं कैसे करेंगे, क्योंकि अव्यक्त वतन में ये साकार तन तो जाएगा नहीं। हम सब अपने दिव्य बुद्धि के विमान से वहां जा सकते हैं। बुद्धि बहुत स्वच्छ और पवित्र चाहिए। साथ साथ अगर एक दो बातों का आप ध्यान रखेंगे कि हम सब बहुत आवाजों की दुनिया में रहे हैं, आदत बनी हुई है, जहां पर 4-6-8 भाई बहनें इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर बहुत आवाज शुरू हो जाती, बोलना, बातें करना, उसका बहुत एक रस ले रहे हैं दुनिया में। क्या हम सब इस भूमि पर अव्यक्त वतन का अनुभव करने के लिए, अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए मन का और मुख का मौन रख सकते हैं? मोबाइल तो आजकल बहुत बड़ी माया है, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 3 दिन के लिए जितना हो सके मोबाइल को साथ में नहीं लाना, साइलेंस कर दो, इसको ऑफ कर दो और अपने कमरों में रख दो बंद करके। अगर वो बार बार अटेंशन जाएगा, किसका आया, किसने बात की, क्या जरूरी है, तो बार बार ऊपर जाने की बजाय बुद्धि आपके साकार लोक में भटकती रहेगी। और कोई अगर ऐसा समाचार आ गया तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी, आपका योग टूट जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी जिनको है, लगता है इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, चलता था थोड़े समय पहले, अभी हो सकता है न चलता हो, लेकिन अगर संकल्प पक्का कर लो कि मुझे तो इस 3 दिन में अव्यक्त वतन की सैर करनी है, तो 3 दिन के लिए बंद करो, सब कुछ बंद। मन इतना शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ बन जाए। वैसे भी भक्ति में एक शब्द देते हैं, अंतर मन वाहन, अंतःवाहक शरीर। और भक्तों ने, जो बहुत नौधा भक्ति करने वाले, कई ऐसे संत, ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिस की द्वापर युग में, जो एक स्थान पर बैठे हुए और कई स्थानों पर इमर्ज हो जाते थे, अनुभव करा देते थे, शरीर यहाँ है लेकिन अपने मन की शक्ति से, अपने अंतर्वाहक शरीर से, सूक्ष्म शरीर से वो कहीं भी प्रकट हो जाते थे। अब ये अभ्यास करने के लिए हमें कुछ तो एकांत चाहिए, बिल्कुल एकाग्र चित्त स्थिति, एकांत की स्थिति, और उस स्थिति में केवल मैं और मेरा बाबा। अगर सचमुच ये अनुभव आप करना चाहते हो तो अंतःवाहक शरीर से अव्यक्त वतन की सैर, मूल वतन की सैर, और साकार वतन में जो आजकल दुनिया में चल रहा है, जो हाहाकार मचा हुआ है, अनेक आत्माएं पुकार रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं को आप सहारा दे सकते हो, सकास दे सकते हो। ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए सभी बाबा के बच्चे 3 दिन के लिए ये लक्ष्य ले लो कि मुझे कुछ अनुभव करके जाना है। क्लासेस सुन के जाएंगे, क्लासेस तो सुनते रहते हो, आजकल तो इंटरनेट पर, मोबाइल के अंदर हजारों क्लासेज हैं, चाहे जिसकी सुनो, जितना चाहिए सुनते रहो, लेकिन बाबा के घर में आए हो तो कुछ गहरे अनुभव करके जाना। और उसके लिए बाबा ने आप सबको एक गुफा दी है, सबके पास वो गुफा, ये भ्रकुटी की गुफा है, ये हमारा अकाल तख्त जो है, ये हम आत्माओं के तपस्या के लिए बहुत सुंदर स्थान है। बैठे यहां हो, सबके बीच में बैठे हो, लेकिन मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर एक चमकता हुआ हीरा, एक चमकती हुई मणि, इस गुफा में विराजमान हूं। मैं एक महातपस्वी आत्मा हूं, बहुत ऊंचा सम्मान है ये। और इस महातपस्वी स्वरूप में मैं इस आसन पर विराजमान हूं, इस गुफा में बैठी हूं, बाबा की सब शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और बाबा मुझे अपने समान मास्टर सूर्य बना रहे हैं, मैं ज्ञान सूर्य की तरह चमकता हुआ सितारा हूं। एक अभ्यास करके देखो, इस स्थान पर बाबा ने आपको बुलाया है कि कि मेरे बच्चे अब बाबा के समान विश्व कल्याण की सेवा में हाजिर हो जाएं। बहुत सेवाएं की, तन से की, मन से की, धन से की, लेकिन वो हदों की सेवाएं की। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए हम सबको अपने बेहद के स्वरूप में स्थित होना है और उस स्वरूप में बैठ करके केवल मैं और मेरा बाबा, उसकी किरणें, उनका अनुभव। तो एक साकार वतन में चलते फिरते हो सकता है हमारी माताएं अभ्यास कर सकती हो कि मुख और मन शांत है और ये हीरा इस भ्रकुटी आसन पर चमक रहा है। इसको बाबा कहते हैं मेरे बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। मैं आत्मा राजा हूं, मन, बुद्धि, संस्कार ये मेरी चैतन्य शक्तियां हैं और ये कर्मेंद्रियां जिनके माध्यम से मैं कर्म करने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। जैसा चाहूं, जो चाहूं वो देखूं, जो चाहूं वो बोलूं, जो चाहूं वही सुनूं, जो चाहूं वही करूं। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बीच बीच में जब समय मिले अपनी एक दरबार लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी दरबार लगाते थे, अपने आप से बातें करते थे। मान लो आप यहां बैठे हैं और मन कहीं दूसरी जगह जा रहा है, पता तो चलता है, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह है। जो बातें सुनाई जा रही हैं वो ऊपर से निकल रही हैं, अंदर नहीं जा रही, समा नहीं रही है। तो क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं? इतना खर्चा करके, इतना यात्रा करके, इतनी मेहनत करके, अपने कारोबार को बंद करके इस स्थान पर आने के बाद भी हे मन, तुम अभी क्यों भटक रहा है? तुम क्यों नहीं मेरे को बाबा से मिलने का अनुभव कराता है? क्यों नहीं मुझे अव्यक्त वतन की सैर कराता है? तुम क्यों भटकता है? तुझको क्या चाहिए? बुद्धि, तुम ठीक ठीक समय पर मुझे साथ क्यों नहीं देती? संस्कार, जो मेरे आदि अनादि संस्कार थे, पवित्र संस्कार थे, शुद्ध संस्कार थे, ये देह मान वाले संस्कार बार बार क्यों इमर्ज होते हैं? कभी समय मिले कमरे में जाओ, एकांत में बैठो, अपनी राज दरबार लगाओ, पूछो अपने आप से, आंखें क्यों चंचल हैं? कानों से क्यों व्यर्थ बातें अंदर चली जाती हैं? मुख से क्यों ऐसे बोल निकल जाते हैं? क्या मैं आत्मा मालिक नहीं हूं? तो आप सब स्वराज्य अधिकारी स्थिति का एक अच्छा अनुभव करेंगे। जितना व्यक्त और व्यर्थ दो बातों में हमारी समय और शक्तियां नष्ट होती हैं। एक, हम व्यक्त में रहते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है, संसार का क्या हाल है, फलाना क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूस का क्या हो रहा है, ये सब समाचार जो आजकल सुन रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब व्यक्त बातें हैं, व्यक्त व्यक्त दुनिया की हैं। अभी 3 दिन के लिए इन सबको बंद करो, जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। जितना जो व्यक्त से और व्यर्थ से, व्यर्थ क्या है, ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये किसने किया, कब हुआ, अगर कोई भी बात को देखते सुनते आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे की उलझन पैदा हो रही है, ये व्यर्थ है, जिसको हमें नहीं देखना है, बाबा ने मना किया है। बच्चे, अभी व्यर्थ को देखना, सुनना, सोचना, बोलना ये आपके लिए निषेध है। और 3 दिन के लिए भी अगर आप निषेध कर दो कि मैं पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव से मुक्त रहूंगा, कुछ भी कोई बोले मैं नहीं सुनूंगा, आप देखेंगे जो व्यर्थ और व्यक्त से मुक्त है उसको अव्यक्त वतन अपने आप बुला लेगा, बाबा बुला लेगा, आ जाओ बच्चे मेरे पास, बाबा के पास बहुत टाइम है इस समय, आओ बातें करो, रू ध्यान करो। तो सभी पहला अभ्यास ये करना कि मैं बाबा के इस भूमि पर आया हूँ, मुझे अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है, अव्यक्त वतन का सैर करना है, अव्यक्त मिलन मनाना है, बाबा से वरदान लेने हैं, शक्तियाँ लेनी हैं, क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थितियों के देखते हुए हम सब बाबा के बच्चों को अपनी बहुत शक्तिशाली समर्थ स्थिति बनाने की जरूरत है। कोई भी परिस्थिति जो बीच में दो साल हम सबके आगे पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में परिस्थितियां आई हैं, कई बाबा के बच्चे पास हुए हैं लेकिन कईयों को इन परिस्थितियों ने बहुत हिलाया है। कई बाबा के पक्के पक्के बच्चे भी इन परिस्थितियों में हिले ही नहीं हैं लेकिन अलबेले हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, बहाना करने लगे हैं जो सेंटर पर आना चाहिए, जो सेंटर के वातावरण का लाभ लेना चाहिए उससे अभी तक भी कई वंचित हैं। सब कुछ खुलने के बाद, छुट्टी मिलने के बाद भी अभी भी आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, उसके कारण जो हमारी एक ऊंचे से ऊंची स्थिति बननी चाहिए उससे वंचित हैं। हम सब इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, अभी तो बहुत छोटी सी बात आई है, इतने बड़े विश्व का परिवर्तन होना है, इस कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन की वेला है। विनाश प्रलय नहीं लाता है, विनाश परिवर्तन लाता है। और इस कलयुग के बाद सतयुग आएगा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सबके लिए। इसलिए कोई भय करने की, चिंता करने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन होगा और इतना श्रेष्ठ परिवर्तन होगा, एक और इतनी सारी आबादी जो है, इतनी मनुष्य आत्माएं जो हैं, उन सबको मुक्ति मिलेगी, दुखों से, अशांति से, हाहाकार से सब मुक्त हो जाएंगी। और दूसरी ओर जो आत्माएं ज्ञान और योग को सीखेंगी उनके वो जीवन मुक्ति का पद मिलेगा, सतयुग के अंदर उनका पार्ट होगा। इसलिए ऐसे सुहावने समय पर, भले चारों तरफ हाहाकार का समय है, बाबा के बच्चे खुद हाहाकार के बीच में फंस न जाएं, उसके लिए क्या जरूरी है, इस समय अपनी इतनी श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाना। आप सब यहाँ इस लक्ष्य से आए हो कि मुझे अपनी बहुत ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, जिससे कोई भी परिस्थिति कितनी भी बड़ी आ जाएगी हम उसको बहुत सहज पार कर लेंगे। अब स्थिति ऊंची कैसे बनेगी, उसके लिए चाहिए अच्छी श्रेष्ठ स्मृति। स्मृतियां जितनी अच्छी हैं, अब स्मृतियों में हमारी याददाश्त में क्या है, जो कुछ बीत गया है, जो कुछ हुआ है, जो हमने किया है, वही सब रिपीट होता रहता है। और जो बीती को रिपीट करता है वो सदा ही दुखी और भयभीत रहता है। इसलिए अगर ये संकल्प आप सब आज कर लें इस भट्टी के अंदर कि जो कुछ बीत गया है वो भूतकाल है, मुझे उसका चिंतन नहीं करना है, फुल स्टॉप, बीत गया बस खत्म। एक घंटे पहले भी बीत गया वो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगेगा तो फुल स्टॉप जमा हो जाएगा, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सब स्टॉक जमा करने का ये समय है। खूब भरपूर हो जाओ, जो भरपूर होते हैं वो हिलते नहीं हैं। कोई भी देखो आज खाली चीज है, मान लो कोई घड़े पर पानी आधा है घड़े में, और वो लेके आप चलेंगे तो क्या करेगा, छलकेगा, हिलेगा, डुलेगा। और अगर भरा हुआ है, फुल है कोई चीज, तो उसमें हलचल नहीं होती। आज जो ब्राह्मण आत्माएं छोटी छोटी बातों में हलचल में आती हैं, उसका एक मूल कारण है फुल नहीं है, भरपूर नहीं है। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से दाता ने इतना दिया है, देने में जरा भी अंतर नहीं रखा। एक को दिया दूसरे को नहीं दिया ऐसा नहीं है, चाहे वो 70-80 साल वाला है, चाहे 5 साल वाला, 2 साल वाला है, सबको बाबा ने समान रूप से पढ़ाया है। ज्ञान का सब खजाना, जो मुरली बड़े पुराने पढ़ रहे हैं वो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, जो 6 महीने के आए हुए हैं वो भी वही पढ़ रहे हैं। बाबा ने, देने वाले ने हम सबको बहुत कुछ दिया है और समान रूप से दिया है, लेकिन हमने उसको समाया कितना है। देने वाले ने दे दिया, अगर हमारा इधर से आया और इधर से निकल गया, अंदर नहीं गया, तो हमारी जीवन परिवर्तन नहीं होगी। श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बाबा जो कुछ सुना रहा है वो हमारे जीवन में समाता जाए, समाता जाए, हम स्मृति स्वरूप बन जाए। मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, हम योग लगाने वाले हैं या योगी जीवन वाले हैं? योग लगाना, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा योग लगा लिया, बस पूरा हो गया काम। और बाबा कभी कभी बड़े मुस्कुराते हुए रमणीक रीति से बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम 2 घंटा मुझे याद करते हो, 22 घंटा किसको याद करते हो? कहां कहां बुद्धि जाती है। इसलिए मेरे बच्चे निरंतर योगी बने, जरा भी उसमें अंतर ना आ जाए। मेरे सिवाय जब कहते हो मेरा तो एक बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, तो जब बाबा को संसार बना लिया तो संसार से बाहर कहां जाते हो, जो बुद्धि भटक जाती है, योग नहीं लगता है। 2 बातें हमारे मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न है, और अगर उन दोनों को हमने समाप्त कर दिया तो सहज योगी, स्वतः योगी जीवन बन जाएगी। और उसके लिए आपको रियलाइज करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि वो बातें कहां कहां से रुकावट डाल रही हैं। सबसे पहली बात है, कारोबार में दिन में कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता हूं। मैं देह मान वाला मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं योगी हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं बड़े पद वाला हूं, मैं बड़े कुल वाला हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, ये सब देह अभिमान वाला मैं, ये हमारे अंदर अहंकार को उत्पन्न कर रहा है। जब तक किसी ने इस अहंकार को नहीं मारा तब तक वो योगी नहीं बन सकता, कितना भी योग लगा लो। इसलिए सब बाबा के बच्चों को अपने मैं को चेक करना चाहिए, जो मैं कहता हूं, जब मैं शब्द बोलता हूं तो क्या मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं? मैं आत्मा हूं, ये सामने वाली आत्मा है, आत्मा को देख करके मैं बात कर रहा हूं। मैं कहते ही भान रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक निमित्त मात्र, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अगर ये मैं शब्द समाप्त हो जाए, इसलिए देखो भक्ति में भी शिव बाबा पर, देवियों पर बकरे की बलि उन्होंने चढ़ाई है, बकरा मैं करता, इसलिए अब वो तो जानवर को बेचारे को मार रहे हैं, और बाबा ने कहा है बच्चे इस मैं को मारो, इसको जलाओ, इसको कुर्बानी दे दो। हम सब इतने नम्रचित, इतने निर्माणचित बने जो मैं सदा के लिए समाप्त हो जाए। अगर मैं है तो उसकी एक निशानी आपको मैं बताता हूं, अगर मैं अंदर से है कि मैं कुछ हूं, तो अपना अपमान सहन नहीं होगा, कोई कुछ भी बोलेगा, मेरी बात को कट करेगा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा, मुझे स्थान नहीं देगा, मेरे से बात नहीं करेगा, तो उसी समय ऐसे लगेगा मेरी तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई यहाँ जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, और वो मैं, अहंकार वाला मैं, स्थिति को बनने नहीं देगा। अगर श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो हम सब बाबा के बच्चों को एक ताबीज पहनना चाहिए। पहन सकते हो, ताबीज पहन लो कि मैं एक आत्मा, बहुत नम्र चित आत्मा हूँ, निर्माण चित आत्मा हूँ, निमित्त हूँ, निर्माण हूँ। और दूसरा जो हमारी स्थिति में सबसे बड़ा रुकावट है, बार बार आता है, मेरा, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा वो है, और मेरे मेरे के फेरे में हर एक आत्मा फंसी हुई है। जबकि ना कुछ लेके आई है ना कुछ लेके जाएगी, कहते हैं ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा एक रमणीक बात कहता है, जैसे बंदर चना को ऐसे मुट्ठी बांध करके पकड़ लेता है, ऐसे ही मेरे बच्चों ने मुट्ठी को, चने को पकड़ करके मुट्ठी को ऐसे बंद किया हुआ है, खोलते ही नहीं है। कहीं न कहीं अपनी बुद्धि को इतना फंसाया है धन में, साधनों में, संबंधों में, संस्कारों में, ये मेरा है। आज सारी समस्याओं की जड़ मेरापन हो गया, मेरा हिसाब किताब है, मेरे संस्कार हैं, क्या करूं, मुझे तो करना पड़ता है, मेरी जवाबदारी है, मेरे बच्चे हैं, ज्ञान तो बड़ा है, बाबा तो निराकार है, मेरा भी तो कुछ है। जब तक इस मेरे को नहीं मारा है तब तक ऊंची स्थिति नहीं बनेगी। तो क्या आप सभी इस दो बातों को यहां छोड़ सकते हो? बहुत नम्र, बाबा मेरा बाबा है, और मेरा अगर है तो मेरे दिव्य संस्कार, अनादि और आदि संस्कार मेरे संस्कार है। बार बार इमर्ज करो कि मेरा अनादि स्वरूप बहुत पवित्र स्वरूप है, आदि संस्कार इतने स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, कोई बंधन नहीं है, कोई मैं और मेरापन नहीं है, मैं वो देव आत्मा हूँ, वो निराकार परमात्मा की संतान, मैं इतनी श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा संसार है और हमारे दिव्य संस्कार हैं। अगर जहाँ मेरा ये दिव्य संस्कार इमर्ज करो, अपने अनादि और आदि स्वरूप को इमर्ज कर लो, जहां मैं आए वहां मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मैं समझता हूं अगर ये सभी बाबा के बच्चे दो बातों को दृढ़ता के साथ संकल्प करके समर्पित कर दें तो उनकी स्थिति बहुत महान और श्रेष्ठ बन जाएगी। जैसे बाबा बनाना चाहते हैं वैसी स्थिति बनाने के लिए आप यहां आए हैं। तो संकल्प करना, कोई बड़ी बातें नहीं सुना रहा हूं, ऐसे नहीं भारी हो जाना, ऐसा कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता। कई लोग सुन सुन के बहुत भारी हो जाते हैं, बोझ ले लेते हैं, बाबा तो बोझ नहीं लेना, हल्के रहना, संकल्प की बात है। और संकल्प में अगर दृढ़ता है तो बाबा क्या कहते हैं, जहां संकल्प में दृढ़ता है वहां सफलता पीछे पीछे आती है, जहां अंदर की लगन है वहां विघ्न नहीं ठहरते हैं। अगर लगन लग गई तो विघ्न कहाँ है, रुकावटें कहाँ हैं? लगन की कमी है इसलिए कहते ये है ये है ये है। अरे जहां लगन होती है, देखो मीरा को लगन लग गई, कोई की परवाह किया क्या? मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, कितनी भी परीक्षाएं आई सहज पार कर गई। तो हम सब बाबा के बच्चे इस तपोभूमि में आए हैं, शांति वन में आए हैं, तो हम ऐसी तपस्या करके अपनी एक अलौकिक स्थिति बनाए। संस्कार जो पुराने हैं भी हैं, सबके अंदर कोई न कोई कमियां कमजोरियां संस्कार हैं, वो सब स्वाहा। अब इसके लिए दो तीन प्रैक्टिस बताओ क्या करेंगे आप सब। जब आप अपने बिस्तर पर जाना बाबा से गुड नाइट करने के पहले, ऐसे लगे कि जैसे मैं आत्मा इस शरीर में से निकलती हुई इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान होकर अपने निर्वाण धाम की यात्रा पर जा रही हूं। उठते समय यही अभ्यास करना कि मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में प्रवेश हो रही हूं। सबसे गहरा पुरुषार्थ जो कर्म इंद्रिय जीत बनाने वाला है, जो संस्कारों को परिवर्तन करने वाला है, वो है अशरीरी बनने का अभ्यास, विदेही बनने का अभ्यास। मैं एक लाइट माइट संपन्न आत्मा हूं। मैं आत्मा परम धाम घर से इस शरीर में प्रवेश हुई हूं। मैं श्रेष्ठ कर्म के लिए अवतरित हुई हूं। मैंने ये माध्यम लिया है, इसके द्वारा मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। तो ये अभ्यास अगर सोते और जगते भी कर लेंगे तो आप कर्म करते हुए बहुत हल्के फरिश्ते स्वरूप में रह सकेंगे। बाबा चाहता है अभी मेरे बच्चे चलते फिरते उठते बैठते लाइट के घेरे में रहें। क्यों रहें? चाहे यहां हो आप, चाहे अपने लौकिक में जाओगे, अगर अपनी सुरक्षा चाहिए तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इस कलयुग के अंदर बहुत आवश्यक है लाइट का ओरा, लाइट का घेरा। और वो हरेक अपना खुद ही तैयार कर सकता है, कोई आपको देगा नहीं, लेकिन आप अपने शुद्ध पवित्र संकल्पों में रहो। बहुत सीमित और हल्के संकल्प चलाओ, प्रश्नों में उलझो नहीं। मैं लाइट हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं बहुत हल्की हूं। इसको बाबा कहते हैं डबल लाइट स्वरूप। एक लाइट प्रकाश स्वरूप है और एक लाइट हल्कापन है। जितना आप अपने आप को ये अनुभव करेंगे कि मैं एक चमकती हुई ज्योति, एक लाइट हूं और बहुत हल्की हूं, ये डबल लाइट स्वरूप आपके चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल क्रिएट कर देगा, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जब सूक्ष्म शरीर हमारे साथ साथ है और बहुत पवित्र है, स्वच्छ है, कहीं से भी उस पर कोई दाग नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, तो इस वायुमंडल में जो बहुत 99% नेगेटिविटी है, भटकती हुई आत्माएं हैं, विचार लोगों के गंदे, अशुद्ध हैं, विकारी हैं, बदला लेने वाले हैं, कई प्रकार की इच्छाएं लेकर के आत्माएं शरीर छोड़ के जाती हैं, अकाले मौत हो जाती है, शरीर नहीं मिलता है, भटक रही हैं, उन सब की सबसे सेफ्टी के लिए हमें बहुत अच्छा अभ्यास करने की आवश्यकता है। मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर है, मैं सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करूं और बाबा की किरणें इस लाइट को सुरक्षित कर रही हैं। ये अभ्यास तो कर सकते हो ना, चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन इसके लिए आपको बाह्य मुक्ता को छोड़ना पड़ेगा। जरा भी अगर बाह्य मुक्ता है, जरा भी कोई वस्तु, व्यक्ति, बातें आकर्षित कर रही हैं, तो ये अनुभव नहीं होगा। जितना आप आकर्षण मुक्त होकर के रहेंगे, क्या चाहिए बाबा, दो रोटी तो खिला रहा है, दो वस्त्र पहना रहा है। जितना आप अनासक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित होकर के रहेंगे, मुझे क्या चाहिए, संसार असार है। जब तक व्यक्ति के अंदर वैराग्य की वृत्तियां नहीं आती, बेहद का वैराग्य नहीं आता, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, अब ऐसे आंतरिक वैराग्य वृत्ति से ये सब जाने वाला है, कुछ नहीं जाएगा साथ। और मुझे तो ऐसे दिव्य संस्कार धारण करके जाना है, सब खजाने संपन्न होकर के लेकर जाना है, जो आधा कल्प नहीं पूरे कल्प में हमारा ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बन जाए। तो आप सब बाबा के बच्चे इस शांतिवन परिसर में ऐसी तपस्या करो, ऐसी लहर फैला दो जो आपके शुद्ध पवित्र संकल्प एक लाइट हाउस का काम करें, इस स्थान से चारों ओर विश्व के कोने कोने में वो लाइट की किरणें जाने लगे, ऐसे अनुभव हो कहीं तपस्वी आत्माएं तपस्या कर रहे हैं और उनके बहुत शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन मुझ आत्मा को शक्ति दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। क्या हो सकता है? आज अगर 15-20 योगी आत्माएं केवल एक ही संकल्प ले लेती हैं कि मुझे अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर बहुत गहरी शांति का अनुभव करना है, हलचल के संकल्प शांत कर देने हैं। ब्रह्मा बाबा की एक तपस्या मैं अंत के समय की सुनाता हूं, हमारी दादियां सुनाती थी। ब्रह्मा बाबा ने अंत समय में एक साल के अंदर ऐसी गहरी तपस्या की जो बाबा के क्लासरूम में एक घड़ी थी और घड़ी में एक चिड़िया आती थी, बीच बीच में घंटी बजाती थी, घंटा बजाती थी, चू 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 करती थी। और बाबा जब योग कराने बैठ जाता था तपस्या में ऐसे, तो वो डिस्टर्ब होता था, टिक 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 या आवाज करती थी। तो बाबा कहते थे बड़े प्यार से, बच्ची इस बच्ची को शांत कर दो। समझ गए मेरी बात? माना बाबा को वो आवाज भी जो चू चू कर रही है या टिक टिक हो रही है, उस तपस्या के अंदर उसकी भी आवाज डिस्टर्ब न करे, उसको भी शांत कर दो। ऐसा योग करो ना, आप आए हो योग भट्टी में, क्यों इधर उधर के संकल्प चले, ये उठ गया, ये बैठ गया, ये आया, ये गया, फट से ऐसे ध्यान जाता है, ऐसे अटेंशन जाता, मुझे नहीं देखना। कोई भी आवाज, कोई भी प्रकार की संकल्प की हलचल भी शांत हो जाए। अगर इतने सब बाबा के बच्चे इतनी शांत स्वरूप स्थिति में एकाग्र होकर के ऐसे तपस्या करें, तो ये विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य है, प्रकृति परिवर्तन का कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो सकता है। हम सब लाइट हाउस बने। कितनी आत्माएं दुख अशांति परेशान होकर के भगवान को पुकार रही हैं, हम सब उनकी पुकार सुने। बाबा कहते हैं तुम मेरी राइट हैंड भुजाएं हो, जो कार्य मुझे करना है मैं हैंड के द्वारा ही करूंगा, हाथों के द्वारा ही करूंगा। जब हम सब बाबा के हैंड्स हैं, बाबा हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य कराना चाहता है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम बाबा के इस कार्य को संपन्न करने का संकल्प ले लें। तो आज की इस भट्टी में आप सब ऐसा बहुत पवित्र संकल्प करो कि बाबा आपका जो कार्य है वही मेरा कार्य है, मैं आपके कार्य को संपन्न बनने के करने के लिए दृढ़ता का संकल्प लेता हूं। इस संकल्पों में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं, एकाग्र संकल्प। बाबा को कोई समाचार सुनाता था, बच्चे क्या है, क्यों बाह्य मुक्ता में आ रहे हो? बाबा को पता है सब, सुनता ही नहीं था। जितना विस्तार था बाबा ने सब सार में समेट लिया, ऐसी तपस्या की तप संपन्नता को प्राप्त किया। तो हम सब बाबा के बच्चे अब ऐसी तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें कि हमें अपनी संपन्नता को, अपने फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त करना ही है। ब्राह्मण सो फरिश्ता बने, तब हम वापस बाबा के साथ उड़े और ये सारी मनुष्य आत्माएं जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाएं। ऐसी बहुत दया की, रहम की दृष्टि डालो कि इन सबको मुक्ति मिले। लेकिन उस मुक्ति का आधार है हम अपने सब संस्कारों से, कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं। तो उसके लिए तपस्या करो, बहुत अच्छा योग करके, ऐसे अनुभव करके जाना जो लगे, जो आपको देखे कि सचमुच ये बहुत अच्छा परिवर्तन हो करके आए हैं, इनकी रूहानियत कैसी है, इनकी चमक कैसी है, इनकी दिव्यता और अलौकिकता कैसी है, वो आपकी चलन से, आपके चेहरे से, आपके व्यवहार से लोगों को अनुभव होने लगे, तब तो कहेंगे आपने भट्टी की। नहीं तो आए 3 दिन मौज करके, खाया पिया घूमा और चले गए, इसके लिए तो नहीं आए हैं ना। अच्छी तपस्या करना और ऐसा लक्ष्य रखना कि कि अभी हमें 3 दिन बिल्कुल अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना है, केवल बाबा से बातें करनी और कोई से नहीं करनी, तब तपस्या का आनंद ले सकेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं, 5 मिनट के लिए शरीर से अशरीरी हो जाओ, बिल्कुल डिटैच हो जाओ।
जी।